हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11वां अध्याय श्लोक संख्या 33। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबरधरुणबिंबफल धरोष्ठा पूर्णेन्द्रसुंदरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परम् किमपि तत्व अहम् न जानि। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति देवी स्तवे वेदी सांगपत् क्रमोपनिषदि गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद् गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद 11वां अध्याय जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश। अत्यंत ही सुंदर रीति से हमने भगवान का द्वारिका तक पीछा किया, मतलब भगवान जिस तरह से गए द्वारिका में और सबसे पहले सारे नगरवासी भगवान के पास आए, उनको भेंटें इत्यादि दी। फिर बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार की कैटेगरीज के भगवान के साथ मिलने आए। फिर भगवान सबसे पहले द्वारिका में अपनी माता के भवन में गए, माताओं से मिले, उसके उपरांत अपनी पत्नियों से मिले जिन्होंने भगवान को देखते ही उनके मन में महान सुख, महान आनंद प्राप्त हुआ और जो बहुत ध्यान से भगवान के ध्यान में ही बैठी हुई थी, क्योंकि भगवान जब नहीं थे तो भी वो भगवान से खुद को विलग नहीं समझती थी, सदैव भगवान के ही ध्यान में होती थी। और जैसे ही भगवान आए तो वो आसन से भी खड़े हो गए, उत्तस्थुरारात सहसा सनाशयात, और अपने ध्यान से भी, अपनी आत्मा से भी, अपनी देह से भी वो खड़ी हो गई। और साकम व्रते व्रीडित लोललोचना, और भगवान को देखते ही उन्होंने अपने समस्त व्रतों का त्याग कर लिया। जैसे हमने पढ़ा था कल कि याज्ञवल्क मुनि ने जो स्त्रियों के लिए त्याग इत्यादि बताए, व्रत बताए, जो नियम उनके विषय में पढ़ा, और भगवान की पत्नियों ने उन समस्त व्रतों का त्याग कर दिया। यहाँ पर एक बात फिर भी हमने नहीं डिस्कस की थी, वो ये कि जिस प्रकार पति जब बाहर जाता है तो स्त्रियों के लिए कुछ नियम है, उसी प्रकार ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सारा अंकुश, सारे नियम केवल स्त्रियों के लिए ही है, पुरुषों के लिए भी नियम है। जैसे हमने देखा कि कोई स्त्री ऐसी नहीं थी जो भगवान से प्रेम नहीं करती, सारी स्त्रियां, पहले हम लोगों ने वहां हस्तिनापुर की स्त्रियों के विषय में सुना और आज यहां द्वारिका की स्त्रियां भी भगवान के विषय में बातें करें, लेकिन भगवान ने किस ऐसा नहीं था कि सब जब भगवान की तारीफें कर रही हैं या भगवान के विषय में बातें कर रहे हैं तो भगवान भी हर किसी से बातें कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, उन्हें टाइम दे रहे हैं, उनके साथ बातें कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। भगवान ने भी अपने नियम को फॉलो किया, सिर्फ मुस्कुरा कर सबकी ओर देखा परंतु किसी के साथ कोई संबंध नहीं जोड़ा और डायरेक्ट से अपनी पत्नियों के पास गए। तो हमें यहां पर भगवान होते हुए भी ये शिक्षा दे रहे हैं कि जब हम ग्रस्त जीवन में आते हैं तो हमें अपने जीवन पर अंकुश लगाना होता है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सूत गोस्वामी ने अत्यंत ही सुंदर रीति से भगवान की पत्नियों का के द्वारा उनका लिंगन के विषय में बताया कि उन्होंने किस प्रकार से किया। तमात्म जय दृष्टि भेरंतर आत्मना, अंतर आत्मा से पहले, यानी जैसे भगवान दूर थे, सिर्फ सुनाई दिया कि भगवान आ रहे, मन ही मन में भगवान का आलिंगन किया, फिर जैसे दिखे तो दृष्टि से, और जब भगवान और निकट आए तो अपने पुत्र को भगवान की गोद में देकर उसके द्वारा, के क्योंकि पुत्र जो है, संतान जो होता है, वो पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक होता है। इस प्रेम, अगर पत्नी जो है वो अपने पुत्र को प्रेम करती है तो समझो अपने पति से ही प्रेम करे, क्योंकि उसका ही अंश है। और यदि पिता यदि अपने पुत्र को आलिंगन करता है तो समझो ये पत्नी का ही सम्मान हो रहा है। तो इसी तरह से भगवान ने मर्यादा में रहकर अपनी पत्नियों से प्रेम का आदान प्रदान किया। तो मानो यहाँ पर शौनक जी एक प्रश्न पूछते हैं कि जब कृष्ण उनके हैं ही, एक ही साथ रहेंगे और एकांत में भी, तो फिर उनके साथ ही रहना है उनको, तो इतनी क्या उत्कंठा व्यक्त कर रही हैं? इसका उत्तर श्री सूत गोस्वामी आज हमें दे रहे हैं श्लोक नंबर 33 में। कृपया मेरे साथ साथ उच्चरित कीजिए। यद्यप यसौ पार्श्वगतो रहुगत तथापि तस्यांग्रियुगम नवम नवम पदे पदे का विरमेत तत्पदा चलापि यश्वेन जहाति कर्हिचित् यद्यप यसौ पार्श्वगतो रहोगत तथापि तस्यांग्रियुगम नवम नवम पदे पदे का विरमेत तत्पदा चलापि अश्विन जहाति कर्हि चेत् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगत तथापि तस्याङ्ग्रियुगं नवं नवं पदे पदे का विरमेत तत्पदा चलापि अश्विन जहाति कर्हि चेत् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगत तथापि तस्याङ्ग्रियुगं नवं नवं पदे पदे का विरमेत तत्पदा चलापि अश्विन जहाति कर्हि चेत्। सुत गोस्वामी अत्यंत ही सुंदर रीति से बता रहे हैं कि यदि भगवान जो है वो इतने मनोहर हैं, इतने सुखद हैं, इतना रस है भगवान के अंदर, इतना आनंद है भगवान के सानिध्य में, भगवान में इतना रस है, इतना मधुरता है भगवान के अंदर, कि यदि कोई एक बार भगवान के सानिध्य में आ जाता है, यदि किसी को एक बार भी भगवान के नाम रूप रस ना कथाओं का आनंद आना शुरू हो जाए ना, फिर वो चाहकर भी उससे दूर नहीं हो सकता। फिर भगवान के सानिध्य, जो भगवान का साक्षात भगवान का सानिध्य जिसको मिला हो, उसके लिए तो भगवान के सानिध्य से दूर होना संभव ही नहीं है। भगवान का संग जिनको मिलता है, अब जो भगवान की कथा से भी हम देखते हैं, हम भागवत कथा श्रवण करते हैं, यदि हमको सही मायनों में भागवत कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है किसी शुद्ध वैष्णव के द्वारा, तो फिर हम बेचैन हो जाते हैं। अगर नहीं मिलता किसी तरह से, हम भागवत कथा नहीं सुन सकते हैं, भगवान की लीलाओं को श्रवण करने का अवसर नहीं मिलता, या किसी प्रकार से भगवान के पवित्र नाम का जप करने का अवसर नहीं मिलता, या कीर्तन श्रवण करने का अवसर नहीं मिलता, तो ऐसा लग रहा होता है जैसे हृदय बहुत व्याकुल हो जाता है। तो हम किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से हम चाहते हैं कि हमें वापस से भगवान की कथा, भगवान के नाम जप का अवसर प्राप्त हो। तो जब साक्षात भगवान जिसका सानिध्य जिसको प्राप्त हो, वो उनको कैसी उत्कंठा होती होगी कि एक क्षण भी वो भगवान के साथ के बगैर रहना उनके लिए संभव नहीं होता होगा। तो कथा कहते समय सूत गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखे हुए हैं और उसी भगवान को निहारते हुए, उसी भगवान के सानिध्य का आस्वादन करते हुए वे कहते हैं, यद्यप्यसौ, असौ का मतलब है वह कृष्ण, कृष्ण जो भगवान हैं, जिनके अंदर षडेश्वरीय है, जिनके अंदर पूर्ण सुंदरता है, जिसके अंदर जो संपूर्ण है, यद्यपि भले ही निश्चित रूप से पार्श्वगतो, यानी बगल में रहते, एकदम करीब उनके रहते हैं, ना केवल उनके साथ रहते बल्कि रहोगत मना अकेले में रहते उनके साथ, मना अब जाहिर है पत्नियां हैं तो भगवान उनके साथ बेडरूम में अकेले रहते, तो यहाँ पर कह रहे हैं यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगतम, भले ही भगवान उनके साथ अकेले में रहते हैं, उनके साथ ही रहते हैं, फिर भी तथापि मना फिर भी उनको कैसा लगता है, तस्यांग्री युगम नवम नवम, तस्यांग्री उनके भगवान के जो चरण कमल है वो युगम मना दो भगवान के चरण है, वो सदैव उनको नवम नवम एकदम नए लगते हैं। भगवान के चरण कमल को जब वो निहारती हैं, जब देखती हैं, तो उनको ऐसा था ही नहीं है कि कभी पहले भी मैंने ये जरंग कमल देखे। जब भी भगवान के सानिध्य का उन्हें अवसर प्राप्त होता है तो उनको ऐसा ही लगता है कि पहली बार भगवान के दर्शन हो रहे, मतलब अनुभव ऐसा ही लगता है, हर दिन ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम मिलन हो रहा है, फर्स्ट टाइम भगवान को स्पर्श करने का अवसर प्राप्त हुआ है, फर्स्ट टाइम भगवान को आलिंगन करने का अवसर मिला है, फर्स्ट टाइम भगवान को दर्शन करने का अवसर मिला है, फर्स्ट टाइम भगवान से बात करने का अवसर मिल रहा है। तो भगवान जो है वो सदैव नित्य नवीन है। इस संसार में क्या होता है कि जिससे हम मिलते हैं तो मिलते 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 उसकी मिलन का आनंद कम होता जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जब भगवान के साथ सानिध्य प्राप्त होता है, क्योंकि रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवानि वर्तते, जब हम परम वो जो परम रस का आनंद लेते हैं तो हमें यह रियलाइज होता है कि आज तक जो चखा वो तो बिल्कुल बेकार था और ये जो रस है वो तो नित्य नवीन है। और उसका मतलब यही है, शाश्वत कहते ना, भगवान शाश्वत है, भगवान का सौंदर्य शाश्वत, उसका मतलब यही है कि उसमें प्रतिक्षण वर्धमान होता है। हर क्षण जिस समय भी भगवान का सानिध्य प्राप्त हो, जिस समय भी भगवान के मिलन का अवसर प्राप्त हो, तो उनको ऐसा लगता है आज बहुत आनंद आ रहा है कृष्ण से मिलकर, आज बहुत अच्छे लग रहे हैं कृष्ण, उनके चरण कमल, उनके नेत्र, उनके मधुर अधर। तो ये सब भगवान को जब भी तथापि तस्यांग्रियुगम नवम नवम। अब यहाँ पर आगे एक क्वेश्चन कर रहे हैं ये सूत गोस्वामी, कह रहे हैं पदे पदे का विरमेत तत्पद। आखिर इस संसार में कौन ऐसा होगा जो कृष्ण से अपने आप को हटा सके, एक बार कृष्ण के साथ उसका मिलन हो जाए, एक बार कृष्ण के मिलन का आस्वादन जिसने कर दिया हो, फिर ऐसा कौन कामना ऐसा कौन होगा विरमेति तत्पदा, जो भगवान के चरण कमलों से दूर हो सकता है। क्यों क्यों बता रहे, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि चलापि यश्री, यहाँ तक के इस संसार की सबसे चंचल स्वभाव वाली जो लक्ष्मी देवी है, जो कहीं पर भी एक क्षण मतलब ज्यादा टाइम टिकती नहीं है, लक्ष्मी जी को चंचल कहा जाता है। चलाप यहाँ पे बताया कि सदैव गतिशील है, सदैव चंचल है, यत जो श्री मना लक्ष्मी, जो लक्ष्मी कभी एक स्थान पर टिकती नहीं है, भले ही कोई बड़ा से बड़ा राजा है लेकिन एक न एक दिन उसका क्षय होने वाला है, यही प्रकृति का नियम है। लेकिन वह लक्ष्मी चलापी, भले ही वो चलापी है, चंचल है, लेकिन न जहाती कर्चित, वो एक क्षण के लिए भी भगवान के चरणों को छोड़कर किधर जा नहीं सकती, कभी उनके चरणों को छोड़ नहीं पाती, किधर भी नहीं जाती, क्योंकि भगवान इतने मनोहर हैं, इतने सुखद हैं कि कोई भी स्त्री उनके चरण कमलों को छोड़ नहीं सकती, उनको देखने की, उनको प्रेम करने की, उनसे बात करने की, उनके साथ रहने की इच्छा हर क्षण बढ़ती रहती है। तो फिर भला उनकी पत्नियों को यदि भगवान को देखकर इतनी उत्कंठा हो रही है तो उसमें हैरत की क्या बात है, वो तो वास्तविक है। भगवान का स्वरूप ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति भगवान से दूर नहीं रह सकता। तो ये तो स्त्रियां हैं, और स्त्रियों का वैसे भी आकर्षण होता है सुंदरता की ओर, और यहाँ पर वो सुंदर तरीन मतलब जो संसार के सारी की सारी सुंदरता जिसके अंदर है, सारा का सारा बल, सारा का सारा सौंदर्य, सारा का सारा ज्ञान, सारा का सारा धन, सारा का सारा वैभव, वैराग्य जिसके अंदर है, वो भगवान साक्षात उनके समक्ष खड़े हैं, तो उनको उनसे मिलन की उनके अंदर उत्कंठा है, वो तो स्वाभाविक ही है। अनुवाद, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल हैं, लेकिन वे भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती थी, तो भला जो स्त्रियां एक बार उन चरणों की शरण में जा चुकी हो वह उनसे किस प्रकार विलग की जा सकती है। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि बद्ध जीव सदैव लक्ष्मी जी की कृपा के भूखे रहते हैं, यद्यपि वे स्वभाव से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती रहती है। भौतिक जगत में कोई कितना ही चतुर क्यों न हो वह स्थायी रूप से भाग्यशाली नहीं होता। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर भौतिक जगत की विशेषता बता रहे हैं कि इसका मतलब ही ये है अशाश्वत। चाहे कितना ही आप चतुर हो सदैव भाग्यशाली नहीं रह सकते, क्योंकि भौतिक जगत है ही दुखालयम, तो यहाँ पर आकर सदैव कोई सुखमय जीवन नहीं गुजार सकता है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि संसार के विभिन्न भागों में ना जाने कितने विशाल साम्राज्य हुए हैं, संसार में ना जाने कितने शक्तिशाली राजा हुए हैं, ना जाने कितने भाग्यशाली पुरुष हो चुके हैं, लेकिन क्रमशः उन सबका क्षय हुआ है। यही प्रकृति का नियम है। क्या नियम है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जिस प्रकार दुख स्थायी नहीं है उसी तरह से सुख भी स्थायी नहीं। जो आप आज आपको मिला है एक न एक दिन आपसे छीन लिया जाएगा, या आप उससे अलग कर दिए जाओगे, या वो वस्तु या वो व्यक्ति आपसे अलग कर दिया जाएगा। यही इस संसार का नियम है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बहुत फर्क है आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में। वो शाश्वत धाम है, वहां पर कोई भी चीज क्षय नहीं होती है और यहाँ पर कुछ भी चीज स्थिर नहीं है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता। ब्रह्म संहिता के अनुसार भगवान की सेवा में करोड़ों हजारों लक्ष्मियां लगी रहती हैं, वे भगवान के साथ सदैव एकांतवास भी करती हैं, तो भी भगवान का सानिध्य इतना नवीन लगता है कि वे क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं छोड़ती, यद्यपि वे स्वभाव से चंचल हैं और इधर उधर विचरण करती रहती हैं। भगवान के साथ आध्यात्मिक संबंध इतना जीवंत होता है कि एक बार उनकी शरण में आ जाने पर भगवान का संग नहीं छोड़ा जा सकता। ये भगवान के सानिध्य की विशेषता है कि जब एक बार भगवान के सानिध्य को कोई जीव प्राप्त कर लेता है, जो एक बार भगवान के चरणों के अमृत को चख लेता है, भगवान के संग का मजा जिसको आनंद जिसको एक बार आ जाता है, तो उसके लिए भगवान भले ही कोई भक्त होता है ना, अगर कभी कभी ऐसे होते हैं कुछ लोग भक्त बनते हैं, किसी तरह से वो भक्ति में आते हैं, लेकिन फिर धीरे कुछ ऐसा होता है उनके जीवन में कि वो भक्ति से च्युत हो जाते हैं और फिर भौतिक जगत में आ जाते हैं। श्री प्रभुपाद जी ने एक बार बताया था कि वो भले पूरे अभी एक बार उन्होंने भक्ति का आनंद ले लिया, उन्होंने फिर भौतिक चीजों की ओर आकर्षण उनका भर गया और भक्ति को छोड़ दिया, फिर चाहे वो पूरी दुनिया में धक्के खाते रहे, भटकते रहे, कभी भी उनको भौतिक जगत में आनंद नहीं आएगा। वो भटक भटक कर एक साल में, दो साल में, तीन साल में, दस साल में वापस भगवान की शरण में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो टेस्ट जो एक बार उनको आ गया है अब वो भौतिक जगत से कभी भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये भगवान का प्रेम जो है वो इतना विलक्षण है। भगवान किसी को भी है ना एक बार अपने प्रेम का मौन का आस्वादन करा देते हैं और फिर वो भक्ति में भी रहता है, फिर उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो आनंद मुझे चाहिए, फिर और करते 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 नहीं आ रहा होता है, नहीं आ रहा होता है, फिर जैसे तैसे करके जरा सा कभी वापस से वो आनंद चखाते हैं। ये भगवान का एक यूं समझे स्टाइल है। भगवान है वो सर्वशक्तिमान है। एक बार पूछा था गोपियों ने कृष्ण से कि कृष्ण कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनसे प्यार करता है वो भी उनसे प्यार करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो उनसे प्यार नहीं करता फिर भी उनसे प्यार करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि अगर उनसे कोई प्यार करता है तो उसकी बदली में वो और भी उनके साथ बुरा करते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं हाँ ऐसा तो है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनसे प्यार करते हैं बस उन्हीं से प्यार करते हैं। ये प्यार नहीं, ये तो सौदागिरी है। मतलब जैसे आज इस संसार को जो प्रेम हम बोलते हैं ना, आई लव यू, उसको तो भगवान ने पहले ही नकार दिया कि उसमें क्या होता है, जो आपसे प्यार करता है उसी से आप प्यार करते हो। लेकिन भगवान ने तो उसको पहले ही नकार दिया, बोला ये तो सौदागिरी है, वहां से प्यार मिल रहा है तो हम भी देते हैं। फिर एक दिन आया, उसने प्यार करना बंद कर दिया तो हमने भी बंद कर दिया। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा प्यार नहीं होता। फिर बोले कि एक वो होते हैं जो हमसे भले इतना प्यार नहीं करते लेकिन फिर भी हम उनके लिए जीते हैं। तो भगवान ने कहा ऐसा प्यार होता है माता और पुत्र के दरमियान। पुत्र माता पिता को इतना प्यार नहीं करते, होता नहीं है स्नेह इतना, लेकिन माता पिता जीते हैं अपने पुत्र के लिए, वो वास्तव में प्रेम है। और फिर कुछ ऐसे होते हैं जो कि है ना, जिनसे प्रेम करते हैं लेकिन उसके बदले में वो और भी बुरा करते हैं उनके साथ। तो भगवान से वैसे गोपी ये पूछ रही थी कि सारे प्यार करने वालों की जितनी भी कैटेगरीज हैं, उनमें आप कौन से हो। तब कृष्ण ने कहा कि मैं इनमें से कोई भी नहीं हूं, मैं एकदम विलक्षण हूं। यदि कोई मुझसे 100% प्रेम करता है तो भी मैं उससे प्रेम करता हूँ। जो मुझसे प्यार नहीं करते उनसे भी मैं प्यार करता हूँ, जो मुझसे प्यार करते उनसे भी, जो मुझसे मेरे साथ बुरा करते मैं उनसे भी प्यार करता हूँ। लेकिन मेरा अंदाज अलग है, मेरा स्टाइल अलग है, क्योंकि मैं अपने प्रेम का प्रदर्शन 100% नहीं करता। वास्तव में भक्तों, ये कृष्ण का, अभी हम पढ़ेंगे जब 10वां सिकंद आएगा तो भगवान बहुत सारी इस तरह की बातें करेंगे गोपियों के साथ। ये भगवान कहते हैं वहां पर कि देखो, अगर मैं अपने प्रेम का 100% इजहार करूंगा ना तो सब मेरे कंधे पर चढ़ना शुरू हो जाएंगे। पहले तुम लोग भी थे ना ऐसे, गाना गा रही थी, गोपी गीत गा रही थी, मेरे लिए तड़पते हो। फिर जब मैं आता हूँ सामने, कोई कंधे पर चढ़ता है तो कोई है ना मान करके बैठ जाता है, कोई किस तरह। इसलिए मैं ना अपने मेरे प्रेम का अंदाज बिल्कुल अलग है। मुझ जैसा प्रेमी इस संसार में और कोई नहीं, इसलिए मेरा कंपेयर किसी के साथ नहीं हो सकता। तो तुम मुझसे ये मत पूछो कि मैं कैसा प्रेमी हूँ। बारह यहाँ पर तो श्रील प्रभुपाद जी भगवान के प्रेम की ये बात बता रहे हैं कि एक बार जिसने भगवान के प्रेम का आस्वादन कर लिया हो, फिर वो भगवान को छोड़कर किधर और जा नहीं सकता। तो जैसे जो लक्ष्मी महारानी, भले ही वो चंचल स्वभाव की हैं, इधर उधर विचरण करती रहती हैं, भगवान के साथ आध्यात्मिक संबंध इतना जीवंत होता है कि एक बार उनकी शरण में आ जाने पर भगवान का संग नहीं छोड़ा जा सकता। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सारे जीव स्वभाव से स्त्रैण हैं। मतलब इस पूरी प्रकृति में सब भोग्य हैं, भोग्य स्त्रैण मतलब सब प्रकृति हैं, सब स्त्री हैं। पुरुष या भोक्ता तो केवल भगवान है और उनकी विभिन्न शक्तियों की सारी अभिव्यक्तियां भी स्त्रैण हैं। मतलब भगवान ने जो अपनी शक्तियों का जो विस्तार किया है ना, वो भी सब नेचुरली सब जो है वो स्त्री रूप में ही है। और भोक्ता को पुरुष केवल भगवान है, भोक्ता केवल भगवान है। तो श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में जीवों को परा प्रकृति अर्थात श्रेष्ठ शक्ति की उपाधि से विभूषित किया गया। भगवान ने कहा श्रीमद् भगवत गीता 7.5 में, अपरेयम इतस्त्वान्याम प्रकृतिम विद्धि में परा, कि जो पूरी जीव है, जीव भूतान महाबाहो या ये दमधारे, कि जो जीव है वो मेरी परा शक्ति है। अब जो भगवान की शक्ति है वो स्त्री रूप में है, तो जीव सारे जो है वो कौन से रूप में, स्त्री रूप में, तो वो सब भोग्य है और भोक्ता केवल भगवान है। भौतिक तत्व अपरा प्रकृति या निष्कृष्ट शक्ति है। भौतिक तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भौतिक तत्व हैं, वो सब अपरा हैं। और जीव क्या है? पराशक्ति, जो आत्मा है वो पराशक्ति है। लेकिन है शक्ति, और भगवान की जितनी भी शक्तियों की अभिव्यक्तियां हैं वो क्या है, स्त्रैण है, यानी कि वो मतलब वो सब भोग्य हैं। और आगे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भौतिक तत्व अपरा प्रकृति या निष्कृष्ट शक्ति है, ऐसी शक्तियां भोक्ता की तुष्टि के लिए व्यवहारत की जाती हैं। अब क्योंकि हम सब भोग्य हैं, जो जितनी भी भगवान की जीव आत्मा हो चाहे भौतिक शक्ति हो, वो सब भगवान की शक्ति भोग्य है। और ये सब क्यों है भोग्य? भगवान को तुष्ट करने के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए पूरी प्रकृति है। तो जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बताया है 5.29 में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तब भगवान ने कहा, उसमें कहा गया है कि मैं ही परम भोक्ता हूँ, तो स्वयं भगवान ही परम भोक्ता है। अतएव जब शक्तियों को सीधे भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो उन्हें असली रूप प्राप्त होता है, और तब शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं रह जाता। इतना सुंदर श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब हम सब जीव आनंद लेना हमारा अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार है भगवान को आनंद प्रदान करना। हम भोग्य हैं, और जब भगवान को किसी तरह से हम संतुष्ट करने की चेष्टा करेंगे तभी हमें हमारा वास्तविक स्वरूप प्राप्त होगा, और तब शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। क्योंकि जब भोग्य वस्तु को भोगा जाता है तब उसे उतना आनंद आता है जितना कि भोक्ता को आता है। तो फिर आनंद तभी आएगा जब कृष्ण की सेवा करेंगे। सामान्यतः किसी नौकरी में लगे लोग सदैव राज्य के परम भोक्ता या सरकार के अधीन कोई पद चाहते हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, देखो नॉर्मली भी हर कोई चाहता है कि हमें जो बहुत बड़ा परम भोक्ता है ना, उसके नीचे काम करने को अवसर मिले। जो भी होते हैं नौकरी करने वाले, जो सर्वेंट्स जो होते हैं, वो बोलते हैं परम भोक्ता, जो बहुत ज्यादा हाईएस्ट व्यक्ति के नीचे में बैठ के उसके अंडर में काम करना चाहता, या फिर मैं गवर्नमेंट के हाईएस्ट पद को प्राप्त करना चाहता। तो चूंकि भगवान इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर की प्रत्येक वस्तु के परम भोक्ता है, अतएव उनकी सेवा में लगना हर्ष का विषय है। तो अब इस संसार में जो हाईएस्ट व्यक्ति होते हैं उनकी सेवा में आने के बाद भी हम कितना गर्व महसूस करते हैं, पता है मैं प्रेसिडेंट के साथ रहता हूँ, मैं उनकी सेवा करता हूँ, या इस राजा का मैं परम सेवक हूँ, मैं उनका एमडी का प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ, तो कितना अच्छा लगता है ना बताना। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं चूंकि भगवान इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर प्रत्येक वस्तु के परम भोक्ता है, अतः उनकी सेवा में लगना हर्ष का विषय है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं एक बार भगवान की परम सरकारी सेवा में लग जाने पर कोई भी जीव कभी उससे मुक्त नहीं होना चाहता। इतनी सुंदर सेवा यदि किसको मिल जाए, सबसे बढ़िया नौकरी, सबसे सुंदर नौकरी, एकदम हाईएस्ट चीफ के साथ अगर हमें काम करने का अवसर मिलता है तो वो कौन चाहेगा कि अभी मैं उसकी नौकरी छोड़कर किसी साधारण व्यक्ति की नौकरी करूं। क्योंकि जीव का कर्तव्य है सेवा करना, जीव को एक ही काम करना है सेवा करना। तो सबसे जीव का सबसे बड़ा गौरव ये है कि वो सेवा भगवान की करे। तो एक बार यदि उसे भगवान की सेवा करने का अवसर मिल जाए तो कौन छोड़ना चाहेगा। मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवान की परम सेवा में कोई पद प्राप्त करना है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमें हमारे जीवन के परम पद की बात बता रहे हैं कि परम सिद्धि आपके जीवन की परफेक्शन ये नहीं है कि किसी गवर्नमेंट का एक अच्छा आपको एम्प्लॉयर बना दिया जाए, या किसी बड़ी कंपनी में आप नौकरी कर दो, या किसी राजा का मंत्री बन जाओ, या प्रधानमंत्री बन जाओ, या किसी गवर्नमेंट का आप कोई सर्वेंट बन जाओ। आपके मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि, हाईएस्ट परफेक्शन क्या है कि भगवान की सेवा में कोई पद प्राप्त हो जाए, आपको भगवान की कोई सेवा करने का अवसर मिल जाए। इससे मनुष्य परम सुखी बनता है, तब उसे भगवान से संबंध बनाए बिना चंचला लक्ष्मी को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। कितना सुंदर भगवान ने, श्रील प्रभुपाद जी ने प्रॉब्लम सॉल्व किया कि हर एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन को खत्म कर देता है, सत्यानाश कर देता है चंचला लक्ष्मी के पीछे भागते भागते भागते। तो आप यदि भगवान की सेवा में अपने आप को लगाओगे तो फिर आपको भगवान से संबंध जब बनाओगे तो फिर आपको लक्ष्मी के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद भगवान के चरणों में है। तो जब आप भी उन्हीं चरणों में सेवा करोगे तो फिर आपको तो भगवान योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान आपकी समस्त जरूरतों को पूरा करेंगे और जो आपके पास है उसकी रक्षा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं।